संयुक्त राष्ट्र समाचार के इस ताज़ा अंक के साथ मैं हूं महबूब खान। 4 अक्टूबर 2019 के इस साप्ताहिक बुलेटिन में शामिल हैं, जलवायु कार्रवाई के बारे में महासचिव की पुकार, दूर है मंजिल मगर आंदोलन ने पकड़ ली है रफ्तार, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला से बचने में कामयाब हो गए हैं 1000 लोग, जो है बड़ी कामयाबी, राष्ट्रविहीनता के अभिशाप को खत्म करने में असाधारण मदद करने वाले एक वकील को मिला नैनसन शरणार्थी पुरस्कार, महात्मा गांधी का जीवन दर्शन आज भी विश्व में प्रासंगिक है और ये संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में भी परिलक्षित होता है, कहना है महासचिव का, और भारत में ग्रामीण पंचायतों में किस तरह महिलाएं ला रही हैं बड़े बदलाव, बदल रही हैं जिंदगियां, 2 महिला सरपंचों के साथ खास बातचीत। हम आपको याद दिला दें कि मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें, पता है news.un.org/hi। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि जलवायु आपदा से निपटने के प्रयासों में अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली है। महासचिव ने गुरुवार को अनेक अखबारों में प्रकाशित अपने एक लेख में ये बात कही। इस लेख में उन्होंने विश्व में बढ़ते तापमान की वजह से दरपेश खतरों पर अपनी चिंता दोहराई है और तुरंत ठोस कार्रवाई किए जाने का भी आह्वान किया है। दुनिया भर के 170 से भी ज्यादा प्रमुख समाचार प्रकाशनों ने महासचिव का ये लेख प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था कवरिंग क्लाइमेट नाउ। इस लेख में महासचिव ने याद दिलाया है कि सितंबर में मुख्यालय में हुए जलवायु कार्रवाई सम्मेलन के मौके पर दुनिया भर में युवा महिलाओं और पुरुषों ने सक्रियता दिखाई और वैश्विक नेताओं से 2 टूक शब्दों में कहा, आप हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। महासचिव ने कहा कि ये युवा महिलाएं और पुरुष दुरुस्त कहते हैं कि विज्ञान के तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता। कुछ लोग जलवायु आपदा को समझने के लिए तथ्यों का सहारा लेते हैं, जबकि जो लोग इस आपदा से सीधे तौर पर प्रभावित हैं वो अपने घरों की खिड़कियों से इसका असर देख सकते हैं। गत सप्ताह जब दुनिया भर के राजनीतिक नेता महासभा के 74वें सत्र के लिए एकत्र हुए तो जलवायु कार्रवाई के लिए हुए प्रथम सम्मेलन के रूप में बातचीत शुरू हो चुकी। महासचिव ने तमाम प्रतिनिधियों से इस सम्मेलन में कार्बन न्यूट्रलिटी और कार्बन उत्सर्जन पर काबू पाने के लिए सिर्फ खूबसूरत भाषणों के बजाय ठोस समाधानों के उपायों के साथ शिरकत करने को कहा था। इस बीच दुनिया भर में करोड़ों युवाओं ने सरकारों के स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में सक्रियता दिखाई और प्रदर्शन किए। इन प्रदर्शनों को अभी तक दुनिया भर में जलवायु मुद्दे पर सबसे बड़ा विरोध घटनाक्रम कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस कामयाबी का श्रेय कांगो के स्वास्थ्य अधिकारियों के नेतृत्व और हजारों स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों व साझेदारों की कड़ी मेहनत को दिया है। कांगो गणराज्य में इबोला का प्रकोप अगस्त 2018 में शुरू हुआ था। इस दौरान इबोला के संक्रमण के लगभग 3000 मामले सामने आए, जिनमें से 2137 लोगों की मौत हो गई। कांगो गणराज्य का इबोला से निपटने का ये सबसे बड़ा और लंबा अनुभव रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। 1 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में उत्तरी कीवू और इतूरी प्रांतों में इबोला के 20 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि उससे पहले के सप्ताह में 29 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य एजेंसी का कहना है कि इबोला संक्रमण के मामलों में आई इस कमी को सावधानी से देखना चाहिए, क्योंकि कुछ इलाकों में अनेक कारणों से अब भी इबोला के संक्रमण को सही समय पर पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इबोला के संक्रमण के घनी आबादी वाले प्रभावित इलाकों से इसका प्रकोप ग्रामीण इलाकों की तरफ बढ़ा हुआ देखा गया, जहां आबादी की घनिष्ठता कुछ कम थी। अलबत्ता नए उपकरण और स्वास्थ्य चौकसी से इस जानलेवा वायरस का मुकाबला करने में ठोस मदद मिली है और लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकी हैं। अभी तक लगभग 2.25 लाख लोगों की हिफाजत की जा सकी है। राष्ट्रविहीनता के शिकार लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे किर्गिज़िस्तान के एक वकील अजीज़ बेग अशुरोफ को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के 2019 नैनसन रेफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अशुरोफ ने पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद 10,000 राष्ट्रविहीन लोगों को किर्गिज़िस्तान की नागरिकता दिलाने में मदद की है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
यूएन शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फिलिपो ग्रैंडी ने मंगलवार को कहा कि अजीज बेग अशरफ की कहानी मजबूत निजी इरादे और दृढ़ता से परिपूर्ण है। उनके मुताबिक ये एक बानगी है कि किस तरह एक व्यक्ति सामूहिक प्रयासों को प्रेरित कर सकता है। नेंसन पुरस्कार विजेता ने जिनेवा में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 1991 में पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद उनका परिवार उज्बेकिस्तान से किर्गिस्तान आ गया था, लेकिन वहां की नागरिकता पाने में उनके परिवार को संघर्ष करना पड़ा। अजीज बेग अशरफ ने पुरस्कार मिलने पर अपने विचार कुछ इन शब्दों में बयान किए।
दिस अवार्ड नॉट ऑल अबाउट मी ऑफ कोर्स दिस आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट दैट दिस अवार्ड
ये पुरस्कार मेरे बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि ये पुरस्कार उन लोगों के लिए है जिन्होंने राष्ट्रविहीनता को समाप्त करने के लिए अथक काम किया है। इनमें किर्गिस्तान में हमारे सहयोगी सरकारी अधिकारी, यूएनएचसीआर के कार्यकर्ता जिन्होंने समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अपनी अपनी भूमिका अदा की है।
अजीज बेग अशरफ ने स्वीकार किया कि कानून में परीक्षण लेने के बावजूद किर्गिस्तान का नागरिक बनने में उन्हें कई प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। विस्थापितों और बिना दस्तावेज के रह रहे लोगों की मदद के लिए दक्षिणी किर्गिस्तान में एक एसोसिएशन की स्थापना करने के बाद उन्होंने राष्ट्रविहीनता की स्थिति को समाप्त करने वाले किर्गिज सरकार के प्रयासों का समर्थन किया। इन मुख्य प्रयासों के तहत बिना कानूनी दर्जे के रहने के लिए मजबूर लोगों पर लगाया गया जुर्माना वापस ले लिया गया था। राष्ट्रविहीनता से निपटने के लिए एक अन्य सफल पहल मोबाइल टीमों का गठन था, जिन्होंने दूरदराज के पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर वंचित समूहों को ढूंढा। उन्होंने राष्ट्रविहीन लोगों की तुलना प्रेतों से करते हुए कहा कि शारीरिक रूप से उनका अस्तित्व है, लेकिन कागजों पर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यूएन शरणार्थी एजेंसी के अनुसार दुनिया भर में लाखों लोग देशविहीनता से पीड़ित हैं। राष्ट्रविहीन होने की वजह से उनके पास ना तो कानूनी अधिकार होते हैं और ना ही बुनियादी सेवाओं तक पहुंच होती है। इस वजह से राजनैतिक और आर्थिक रूप से वे वंचित रहने के लिए मजबूर होते हैं। उनके साथ भेदभाव होता है और शोषण व उत्पीड़न का भी जोखिम झेलना पड़ता है। वर्ष 2014 में यूएन एजेंसी ने देशविहीनता को समाप्त करने के लिए 10 वर्षीय एक मुहिम शुरू की थी। फिलिपो ग्रैंडी ने बताया कि अब तक 2,20,000 राष्ट्रविहीन लोगों को नागरिकता प्रदान की जा चुकी है, जब 15 सदस्य देशों ने उस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर अपनी मुहर लगाई जिसमें देशविहीनता पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। यूएन शरणार्थी एजेंसी की ओर से नेंसन रिफ्यूजी अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो जबरन विस्थापन के लिए मजबूर होने वाले लोगों की असाधारण ढंग से मदद करते हैं।
यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि महात्मा गांधी का जीवन दर्शन आज भी विश्व में प्रासंगिक बना हुआ है और ये संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में भी परिलक्षित होता है। आपसी समझ, टिकाऊ विकास, युवाओं के सशक्तिकरण और विवादों के शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए किए जाने वाले प्रयासों में विश्व शांति के प्रतीक के रूप में देखे जाने वाले और भारत की स्वाधीनता में अहम भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी की इस वर्ष 150वीं जयंती मनाई जा रही है। मौजूदा अशांत दौर में हिंसा कई रूपों में सामने आती है, जलवायु एमरजेंसी के विनाशकारी प्रभावों से लेकर हिंसक संघर्ष से होने वाली तबाही तक, गरीबों के लिए तिरस्कार से लेकर मानवाधिकार उल्लंघन के अन्याय और नफरत भरी बोली और भाषणों के क्रूर प्रभावों तक। महासचिव गुटेरेश ने ध्यान दिलाया कि जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या से पहले गांधी लगातार रेखांकित करते रहे कि हम जो करते हैं और जो करने की क्षमता रखते हैं उसमें बहुत फासला है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर आग्रह किया कि सभी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते समय हमें इस दूरी को पाटने के लिए अपनी सामर्थ्यानुसार प्रयास करने चाहिए। यूएन महासभा ने वर्ष 2007 में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके जरिए अहिंसा के संदेश का प्रसार किया जाता है और शांति, सहिष्णुता, समझ व अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी जमीनी स्तर पर कितना बदलाव ला सकती है, इसकी एक वानगी दिखाई दी न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में। इसमें भारत की दो महिला सरपंचों ने बताया कि किस तरह वे ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रही हैं। मध्य प्रदेश के बारखेड़ी अब्दुल्ला गांव में सरपंच की जिम्मेदारी संभाल रही भक्ति शर्मा ने बताया कि उनके गांव में अब 100% बच्चे स्कूल जाते हैं, शौचालयों की संख्या 900 से बढ़कर 500 से ज़्यादा हो गई है और करीब आधी आबादी के पास पक्के घर हैं। हिमाचल प्रदेश के एक गांव की सरपंच कला देवी के अनुसार शुरुआती मुश्किलों के बावजूद उन्हें रूढ़िवादिता से लड़ने में कामयाबी मिली है। सुनिए भक्ति शर्मा और कला देवी के साथ सचिन गौड़ की खास बातचीत।
इस समय हमारे साथ हैं भक्ति शर्मा और कला ठाकुर, दोनों अपने गांव में पंचायत में जिम्मेदारी संभाल रही हैं और अपने गांव में अपने समुदाय में एक बड़ा बदलाव ला रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य ये था कि हम बता सकें कि भारत का जो डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नेंस है, लोकतांत्रिक स्थानीय प्रशासन है, वो कैसे काम कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
सभी को नमस्कार, मेरा नाम भक्ति शर्मा है और जो ये आज का पूरा कार्यक्रम हमने देखा यूनाइटेड नेशंस में हुआ, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कोलैबोरेट किया था यूएन वुमेन के साथ। मैं और मेरे साथ मेरी सहयोग करने के लिए सरपंच हिमाचल से हैं कला जी, हम आए हुए थे और हम यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस किस्म से महिलाएं आज के समय में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं, पहली चीज़ इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और किस किस्म से ग्रास रूट लेवल पर मतलब ज़मीनी स्तर पर जब महिलाएं कोई भी सरपंच बनती हैं, मेयर बनती हैं, पार्षद बनती हैं, तो किस किस्म से जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, एक सर्वे ने ऐसा बताया कि वो 35% ज़्यादा अच्छे से कार्य करती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने आए थे। मेरा मूलतः उद्देश्य था कि मैं बात करूँगी महिलाओं में इकोनॉमिक डेवलपमेंट या एम्पावरमेंट किस किस्म से हुआ, और कला जी आप कैसे बात करें?
मेरा रूढ़िवादिता पर जो प्राचीन काल से चली आ रही रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करना है और महिलाओं को किस प्रकार से समाज में आगे बढ़ाना है, उनको उनके जिम्मेदारी से अवगत करवाना है, और ये हमने कोशिश करके भी किया है। अपने पंचायत से शुरू किया और जैसे जैसे शुरू में हम अपने पंचायत में है बहुत प्रॉब्लम आई, समस्याएँ खड़ी हुई और धीरे धीरे लोगों के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ तालमेल करके हमने अपने पंचायत को बुलंदी तक पहुँचाने में भरसक प्रयत्न किया।
तो आपने बताया कि जो मध्य प्रदेश का आपका गांव है उसमें आपने 100% स्कूल एनरोलमेंट हैं, उसके अलावा पहले 9 या 10 शौचालय होते थे, अब 500 से ज़्यादा है, तो ये छोटे स्तर पर काम है लेकिन इसको करने में भी इतना समय लग गया और अब ये रिज़ल्ट आ रहे हैं, आपने ऐसा क्या किया जिससे ये काम इतने कम समय में संभव हो पाया?
तो ये हमारी बेसिकली जब हमने इलेक्शन अपना मैनिफेस्टो तैयार करा था 2015 में ही कि हम किस किस्म से काम करेंगे, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में था क्योंकि उसी समय स्वच्छता अभियान चल रहा था। तो अगर मैं शौचालयों की बात करूँ तो पहले 9 थे और अब हमने 526 के दौरान मतलब हर घर में हमारा शौचालय है, तो हमारी पंचायत ODF है, ओपन डेफिकेशन फ्री है अभी। तो ये काम लगने में आपने जिस तरीके से कहा कि बहुत छोटे हैं, मगर इनका जो इम्पैक्ट है वो इतने बड़े स्तर पर आता है क्योंकि जब ऐसे ही छोटी छोटी पंचायतें ODF होती हैं तब हम देखते हैं कि हमारे पूरे राष्ट्र में किस किस्म से काम जो है वो किस किस्म से जो फ्लैगशिप ये जो स्कीम्स हैं ये अपना स्वरूप दिखाती हैं, एक बड़ा स्वरूप दिखाती हैं। जैसे हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन करा, जनधन योजना के तहत सबके खाते खुलवाए, ये बात कहने को तो बहुत छोटी, अच्छा खाते खुलवाए मगर उससे जो उनको फ़ायदे मिल रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, तो इन छोटी छोटी सरकार स्कीमें इसलिए बनाता है ताकि इनको लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ। हमारे देश में समस्या इम्प्लीमेंटेशन की है, तो हमने सिर्फ सरकार की 50 से ज़्यादा सिर्फ पंचायती राज को लेकर स्कीम्स हैं और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमने उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है।
कि एक महिला होने के नाते आपको क्या कोई चुनौती आई इस सेंस में कि लोग गंभीरता से आपको लेने में, आपको लगा कि लोग हमें नहीं ले रहे हैं, और अगर ऐसा आया तो आपने क्या रणनीति अपनाई?
ठीक है सर, शुरू में हमें सर बहुत दिक्कतें आई, जैसे हमने पंचायत राज में कदम रखा तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि मेरी पंचायत जो काफ़ी दूर दराज है, रूढ़िवादिता के कारण लोगों के मानसिक मन को बदलना जो काफ़ी कठिन था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने प्रोसेस को शुरू किया, उनको अपने साथ बैठाना शुरू किया तो लोगों ने मेरा भरसक सहयोग दिया और आज मुझे खुशी है कि हमारे पंचायतों में 5-6 पंचायतें जितनी भी साथ लगने वाली है, लोगों ने रूढ़िवादिता को ख़त्म करके हम महिलाओं का साथ दिया और हमारी ज़्यादातर सरपंच जो महिला बहनें हैं, और जब से महिलाएँ हमारे जो पंचायत में आई है महिलाओं के सहयोग से हमने अपनी दूसरी महिला बहनों को उनके ग्रुप बनाकर महिला मंडल बनाकर जागृत किया और आज उनके ज़्यादातर खुशी इस बात की है कि आज उनके पति और उनके पुराने जो बुजुर्ग ससुर सास उन्हें सपोर्ट करते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात सर हमारे लिए नहीं हो सकती।
जब भी मुझे ऐसा लगता है महिलाएं कुछ काम करती हैं वो लीक से हट के करती हैं और जब वो लीक से हटती हैं तो बहुत समस्याएं आती हैं। मुझे भी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं थीं, मतलब लोगों को ये डर था, मतलब जब मैं अपने इलेक्शंस के दौरान थी, बहुत मज़ेदार बात है, तो मुझसे गांव की लड़की कहती थी अरे भाई शादी कर इतनी लोगी, मैंने कहा नहीं नहीं करूँगी आप बेफिक्र रहो, बिकॉज उनको डर था कि हाँ अब हम सरपंची में इतना चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ें कहीं बीच में ना छूट जाएँ। तो ऐसी बहुत दिक्कतें हमें भी आई थी और लोगों का भी एक मानसिकता एक माइंड सेट क्योंकि रिजिड माइंड सेट है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते थे। इन चीज़ों को जब हमने देखा और धीरे धीरे हमने इनको एक झटके में नहीं कोई हटाया, इसमें समय लगा, मगर आज मैं देखती हूँ 2.5 साल बाद हम शायद दूसरी एक जनरेशन जो हमारे पीछे खड़ी है हम उनको वुमेन लीडर्स की तरह देख रहे हैं और आने वाले समय में वो भी सरपंच ही लड़ेंगी तो उनको इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो हमने करा है।
तो आज के इस साप्ताहिक समाचार बुलेटिन में इतना ही, अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।